मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 6 नवंबर 2018 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों स्वागत करने के साथ ही साथ मैं आप सबकी ओर से एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से दीपावली की शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा। आप जानते हैं कि कल दीपावली का त्यौहार है और कल मैं आपसे लाइफ मैनेजमेंट के जरिए सीधे सीधे बात नहीं कर सकूंगा क्योंकि कल छुट्टी भी है। इसीलिए हम सब की ओर से आप सभी दीपावली की पूर्व शुभकामनाएं स्वीकार करें और हम सब प्रार्थना करते हैं कि यह दीपावली का पर्व हम सबको बहुत अधिक ऊर्जावान बनाए, हम सबके अंदर ज्ञान का विवेक पैदा करे और साथ ही साथ हम सब में वह शक्ति पैदा करे कि हम सब अपने अंदर के अंधियारे को, समाज के अंधियारे को, देश के अंधियारे को और यहां तक कि दुनिया के अंधियारे को दूर करने में अपनी भूमिकाएं निभा सकें और रोशनी का एक एक दीपक ऐसे अंधेरे स्थानों पर रख सकें। तो दोस्तों आइए अब दीपावली की इस शुभकामनाओं के बाद अब आज के लाइफ मैनेजमेंट पर हम बात करते हैं और बेहतर होगा कि लाइफ मैनेजमेंट पर ही दीपावली से जुड़ी कुछ बातों को लेकर ही बातें की जाए। अब जबकि मैं दीपावली के बारे में आप सबसे कुछ बातें करने जा रहा हूं, मेरे दिमाग में अनजाने ही यूं कह लीजिए अचानक ही अपने गांव का वह दौर आप कह लीजिए कि कौंधने लगा है जब हम लोग वहां दीपावली मनाया करते थे। और मित्रों उस समय दीपावली के बारे में जो मान्यताएं थी उन मान्यताओं की वैज्ञानिकता पर ही मैं आज आपसे कुछ अपने थॉट्स शेयर करने जा रहा हूं। देखिए दरअसल दीपावली दीपकों का त्योहार है, दीप अवली आप सब जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। दीपकों की पंक्ति, कहा जाता है कि भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने उनका इस रूप में स्वागत किया था। तो डेफिनेटली यह एक उत्साह का पर्व है, घर वापसी का पर्व है और इसीलिए आप देखते हैं कि इस दौर में ट्रेनों में कितनी भीड़ रहती है। जो लोग भी बाहर रहते हैं कोशिश करते हैं कि दीपावली के दिन किसी तरीके से वे अपने घर वापस लौट आएं, राम के 14 वर्ष के वनवास की तरह ही। तो मित्रों ये जो दीपक है दरअसल ये है क्या, इस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा। मैं जब इस पर सोचता हूं तो मुझे लगता है कि ये प्रकाश तो चलिए है ही लेकिन उससे ज्यादा यह ऊर्जा अधिक है। मैं इसे ऊर्जा का नाम देना चाहूंगा और जब हम इसे ऊर्जा का नाम देते हैं तो एक घटना जो 4-5 दिन पहले बातचीत के दौरान मुझे पता चली उससे मैं इसकी शुरुआत करूंगा। दरअसल हुआ ये कि एक व्यक्ति थे और उन्होंने मुझसे ये कहा कि हमारे घर में एक नीचे बेडरूम है, उस बेडरूम में जब मैं पहले जाता था तो बिल्कुल नींद नहीं आती थी और पता नहीं क्या लगता था, कुछ अजीब सा लगता था और वहां रहने का मन नहीं करता था। 1.5-2 घंटे रह के सोने की कोशिश करता था लेकिन नहीं सो पाता था। देखिए वो बेसिकली गेस्ट रूम था, राइट। फिर उन्होंने बताया कि पिछले 15 दिनों से वहां एक गेस्ट जो थे पति पत्नी के रूप में आकर के वहां रहे, ठीक है, वो आकर के वहां रहे उस गेस्ट रूम में और इसके बाद वो चले गए। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने ये बताया कि उनके जाने के बाद अगले दिन मैं फिर से उस गेस्ट रूम में ऐसे ही दोपहर के समय लेटने चला गया तो मुझे बहुत अच्छी नींद आई, बहुत अच्छी नींद आई। ऐसा क्या हो गया कि इसके बाद मुझे नींद आई? देखिए अगर आप उस तरीके से सोचें तो यह बहुत ही सामान्य सी घटना लगती है लेकिन अगर थोड़ी भी गंभीरता से आप इस पर विचार करेंगे तो आपको बहुत अच्छे सूत्र मिलेंगे जिसे आप दीपावली से जोड़ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि हुआ ये कि चूंकि वो जो गेस्ट रूम था वो बंद रहता था तो जो जगह बंद रहेगी या मान करके चलिए कि उस जगह पर नकारात्मक ऊर्जा का जन्म होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे वह नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। और ये कहा ही जाता है कि हम जिन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं वो धीरे धीरे सड़ने गलने लगती हैं, बेकार होने लगती हैं, तो उनसे भी नकारात्मक ऊर्जा पैदा होने लगती है। जिन स्थानों का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं वहां नकारात्मक ऊर्जा जन्म लेने लगती है और धीरे धीरे वो बढ़ने लगती है। तो स्वाभाविक है कि जब हम ऐसे स्थानों पर जाएंगे तो हम पर उस नकारात्मक ऊर्जा का जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए देखिए कि जो खाली घर होते हैं हम कभी कभी उसे भूतहा घर भी कह देते हैं, और खंडहर तो एक तरीके से भूतहा घर जैसे लगते ही हैं, क्योंकि खाली घरों में कोई रह नहीं रहा है, सफाई नहीं हो रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां प्रकाश नहीं जल रहा है, प्रकाश हो ही नहीं रहा है। तो वो गेस्ट रूम अभी तक बंद रहता था तो वहां नकारात्मक ऊर्जा का प्रादुर्भाव होने लगा था। बाद में जब 15 दिन तक गेस्ट आकर के रहे तो उनके रहने से वहां एक ऊर्जा पैदा हुई, एक अलग किस्म की, जिसे हम सकारात्मक ऊर्जा कहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी आई कहां से? नो डाउट कि जो व्यक्ति आकर के ठहरे उनसे पॉजिटिव एनर्जी उस स्थान को मिलने लगी। जब पॉजिटिव एनर्जी आने जब कोई ठहरने लगता है तो पॉजिटिव एनर्जी खिड़कियों से आने लगती है। आप खिड़कियों को खोलते हैं, रात में दिन में आप लाइट जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, कुछ इस तरह की गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। वहां की चीजों को आप खसकाने लगते हैं, यानी कि यूज करने लगते हैं। तो जब हम चीजों का उपयोग करने लगते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसके घर्षण से ऊर्जा पैदा होती है, और वो पूरा का पूरा जो गेस्ट रूम था वो सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। जब मैंने यह घटना सुनी तो अचानक फिर मुझे अपने गांव की एक घटना याद आई। मित्रों, हम लोग का जो मकान था उस मकान के पीछे लगभग मुझे लगता है कि 10 एकड़ की एक जमीन रही होगी, और उस जमीन के बिल्कुल फिर अगले छोर पर एक मकान था जिसमें 3-4 कमरे थे, 3-4 कमरों का मकान था। दीवारें तो उसकी कच्ची थी लेकिन फर्श उसका पक्का था, और उस मकान के सामने एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। मुझे वो दृश्य अभी याद आ रहा है। तो चूंकि हम लोग अपने मुख्य मकान में रहते थे, इसके बाद 10 एकड़ की एक लंबी सी जमीन में बड़ी सी जमीन थी, और उसके बाद वो था तो उसका यूज भी नहीं होता था, वो बंद पड़ा रहता था, वो ऐसे ही बनवा दिया गया था, किसी समय बनवा दिया गया होगा, कारण मुझे मालूम नहीं है। तो जब हमारे गांव में एक शिक्षक आए तो हमारे दादाजी ने कहा कि अगर आप, शिक्षक से कहा कि अगर आपको मकान की जरूरत हो तो आप हमारे उस मकान को ले सकते हैं। शिक्षक ने पूछा कि उसका किराया क्या होगा, तो हमारे दादाजी ने कहा कि नहीं, हमें कोई भी किराया नहीं चाहिए। तो शिक्षक थोड़े से आश्चर्यचकित हुए, बोले कि सेठ, हमारे दादाजी को सेठ जी भी कुछ लोग कहते थे, उन्होंने कहा कि भाई नहीं, आप कुछ तो किराया ले लीजिए। बोले नहीं नहीं, हमारे लिए किराया बस यही है कि आप वहां रह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वहां बत्ती जलेगी, वहां रोशनी फैलेगी, बस इससे बड़ा किराया हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। आप बकायदे वहां रहें, आपको जिन चीजों की जरूरत हो आप बता दीजिएगा, हम थोड़ा बहुत करवा देंगे और आप वहां रहिए। तो मित्र, मुझे आश्चर्य हुआ, आश्चर्य इसलिए भी हुआ कि हम लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, तो मुझे एक बात, मैं तो बहुत बच्चा था, लेकिन दिमाग में ये बात आई कि कुछ पैसे मिल जाते, जो इन्होंने पैसे नहीं लिए। मिल भी क्या जाते, गांव में कितना मिलना था, बहुत ही थोड़ा सा मिलना था, लेकिन उन्होंने जो बात कही कि वहां बत्ती जल जाएगी, दिया बत्ती, सॉरी, उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया था कि वहां दिया बत्ती हो जाएगी, यानी कि कम से कम वो जो जगह, अब मैं समझ पा रहा हूं कि अभी तक अंधेरे में डूबी हुई रहती है, यानी कि वहां नकारात्मक एनर्जी पैदा होती है, कम से कम सकारात्मक एनर्जी तो वहां आएगी। तो अब मैं उसे जोड़कर देख पा रहा हूं। फ्रेंड्स, जो वास्तुशास्त्र है, पूरा का पूरा वास्तुशास्त्र 3 सिद्धांतों पर ही आधारित है कि हमारे कमरों में ऊर्जा आती रहनी चाहिए, यानी कि प्रकाश आता रहे। सूर्य की रोशनी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, आप जानते हैं, प्रकाश का भी सबसे बड़ा स्रोत है। लेकिन यदि किसी वजह से सूर्य का प्रकाश नहीं आ पा रहा है, आजकल मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स बनती हैं, तो कम से कम लाइट तो हो, चाहे वो लालटेन हो, चाहे वो दीपक की लाइट हो, चाहे वो बिजली बल्ब की लाइट हो, लेकिन लाइट वहां होनी चाहिए। और दूसरा है वायु, यानी कि शुद्ध वायु कितनी ज्यादा से ज्यादा हम अपने कमरे में ला सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, ये भी कहावत है, आपने सुना होगा, मुझे याद है कि हमारे गांव में मकान, कई कमरों का हमारा मकान था, गांव में तो आप जानते हैं जमीन मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो कई कमरे उसके होते थे, और दूर दराज में ऐसे कमरे भी होते थे जहां जाया नहीं जाता था, वो कुछ सामान पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है, लेकिन दीपावली के समय में किया जाता था कि उन मकानों को साफ, कमरों को साफ किया जाता था, बकायदे लिपाई पोताई उनकी होती थी, और दीपावली की रात में उन सारे कमरों के दरवाजे और खिड़कियों को खोल करके रखा जाता था, और वहां दीपक विशेष रूप से रख के आया जाता था। यानी कि मकान के हर कोने में दीपक जलता था। कोई स्थान ऐसा नहीं रहना चाहिए जहां अंधेरा हो, और ये माना जाता था कि अगर कोई कमरा बंद रहेगा, दरवाजा बंद रहेगा, तो मां लक्ष्मी आएंगी और दरवाजा बंद देखकर लौट जाएंगी। ये मान्यता थी। अब समझ में आता है कि मां लक्ष्मी लौट जाएंगी का क्या अर्थ है? भैया वो तो देवी हैं, उनको अंधेरा नहीं और प्रकाश से फर्क नहीं पड़ता, वो तो खुद ही प्रकाश का अद्भुत स्रोत है। अब मुझे लगता है कि नहीं, इसका संबंध ऊर्जा से था। अगर हमारे अंदर ऊर्जा नहीं रहेगी तो हम में कर्म करने की क्षमता ही नहीं रहेगी, और यदि कर्म करने की क्षमता नहीं रहेगी, हम कर्म करेंगे ही नहीं, तो समृद्धि कैसे आएगी, लक्ष्मी कैसे आएगी? तो आप देखें कि वह ऊर्जा भी, यानी कि वह दीपक जो दीपावली का उत्सव का माध्यम है, त्योहार का माध्यम है, किस तरह से ऊर्जा का प्रतीक बनकर हमें जीवन के विज्ञान की ढेर सारी सीखें दे जाता है। तो मुझे लगता है मित्रों कि दीपावली के पर्व को हमें इसी रूप में मनाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि नो डाउट कि दीपावली का पर्व ही एक विशेष है, लेकिन हर समय हम इसके जो मूल सिद्धांत हैं उनको अपने जीवन में लागू करते रहें, कि हमारे घर में जो भी स्थान है वो रोशनी से नहाएं, रोजाना हम ऐसा काम करें, अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखें। आप देखें कि दीपावली में क्यों घर की सफाई की जाती है, इसीलिए कि हम सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा पैदा कर सकें। तो ये एक दिन की बात नहीं है, मुझे लगता है कि छोटी दिवालियां तो हमें रोज ही मनानी चाहिए। तो मित्रों अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहूंगा, दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। कल के बाद परसों फिर आप सभी से मुलाकात होगी और फिर ढेर सारी बातें भी होंगी, तब तक के लिए आप सबसे अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।